Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मेडिटेशन पे हम लोगों ने यद्यपि बहुत लंबी चर्चा की है, लेकिन पुनः आप लोगों के प्रश्न मेडिटेशन से जुड़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि सचमुच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें जानना ही चाहिए। प्रारंभ में भी मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि मेडिटेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मेडेरी से लिया गया है और मेडिसिन भी इसी शब्द से लिया गया है। जिस प्रकार से मेडिसिन हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, वैसे ही मेडिटेशन हमारी आत्मा को, हमारे मन को स्वस्थ करता है। मेडिटेरी का भाव ही है टू हील, ठीक करना। तो मेडिटेशन वास्तव में हमारी आत्मा को, हमारे मन को हील करता है, ठीक करता है, हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले चलता है। तमाम तकलीफों का एक ही उपाय है, रामबाण दवा आप इसे कह सकते हैं, मेडिटेशन। और भ्राता जी भी चर्चा कर रहे थे पिछली बार भी कि मेडिटेशन वास्तव में हमारी टीम को बहुत स्ट्रांग कर देता है। टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी, तो इन चीज़ों को भी इतना शक्तिशाली बनाने वाली जो चीज़ है मेडिटेशन ही है। इसीलिए इसकी चर्चा को पुनः भ्राता जी के साथ, जैसे हम कल कर रहे थे, आज भी करते हैं। आइए प्रारंभ में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
कल की जहाँ बात चल रही थी भ्राता जी हम लोगों की, कई लोग मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, बहुत अच्छा, हो नहीं पा रहा है, कुछ सहज से उपाय के साथ आज की शुरुआत करते हैं।
पहले तो मैं शुरुआत तो एक दूसरे चीज़ से करूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, किसी एक छोटी बच्ची को ब्रेन में थोड़ा सा भारीपन लगने लगा
जी,
उसकी आंखों पे उसका इफेक्ट आने लगा। माँ बाप तो चिंतित हुए। मैंने उसको थोड़ी थोड़ी बातें सिखाई तो कल फ़ोन किया कि मेरा ना बीमारी आधी ठीक हो गई है मेडिटेशन करने से। छोटी बच्ची बोल रही है, मुश्किल से 5-6 साल की होगी। तो रुचि ऐसी चीज है जो मनुष्य को किसी भी फील्ड में बहुत सफल करती है
जी।
और योग एक ऐसा सब्जेक्ट है ही कि मैं किसी को निराश करने के लिए तो नहीं कहूँगा, उसमें मेहनत चाहिए और कई लोग उसमें उतने सफल नहीं हो पाते जितना वो चाहते हैं। पर जितना भी कम भी योग हो रहा हो उसमें संतुष्ट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये योग प्रभु मिलन है। और वो प्रभु मिलन अगर 1 मिनट भी होता है तो उसमें आत्मा को बहुत सुख मिलता है, हमारा मन बहुत संतुष्ट होता है। इसलिए हमें लक्ष्य तो अपना महान बनाना ही चाहिए, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में, मार्ग में अगर कुछ गड़बड़ होती है और हम नहीं पहुंच पाते तो हमें उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए जो हमने अचीव कर लिया है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब बाबा ये कहते हैं ना अपने महावाक्यों में, हम ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनते हैं
जी।
तो जब बाबा ये बोलते हैं कि तुम 8 घंटा योग अभ्यास अवश्य करो, जो 8 घंटा मुझे याद करते हैं वो इस विश्व की सबसे बड़ी सेवा करते हैं।
यही कल का प्रश्न था भ्राता जी, जो मैं आपके सामने रखने वाला था। मैं इनका नाम ले लूं ताकि इन्हें भी खुशी हो कि ये मेरा प्रश्न था। ये लखनलाल कौशिक जी हैं रायपुर से, और इन्हीं का ये प्रश्न था कि बाबा हमेशा कहते हैं कि 8 घंटा योग करो, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी 8 घंटा योग नहीं हो पाता है, कृपया बताएं ये कैसे संभव।
लाख कोशिश की जरूरत नहीं, 1000 कोशिश से काम हो जाएगा,
फिर भी 1000 कई बार ज्यादा लगता है।
मैं कह रहा था कि जब ये बात महावाक्यों में आती है कि मुझे 8 घंटा याद करो, और उसके लिए बाबा कई सुंदर बात कहते हैं। जैसे मैंने एक कही कि जो 8 घंटा रोज योग युक्त रहते हैं वो ईश्वरीय कार्य में सबसे बड़े सहयोगी हैं, क्योंकि उनके द्वारा शांति की, पवित्रता की किरणें, वाइब्रेशंस चारों ओर फैलती हैं। तो इस संसार के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं श्रीमद् भगवद गीता की भी एक बात याद दिलाया करता हूँ, उसमें कहा है, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। और कल्याणकारी इसीलिए कि उससे पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन संसार को मिलते हैं। इसलिए एक योगी भी उसके चारों ओर अनेक लोगों का, मैं कहूँगा लाखों और करोड़ों लोगों का कल्याण करने में सक्षम होता है। तो मैं जो बात कह रहा था कि जब मुरली में ये आएगा कि 8 घंटा
योग
करूँ, अब मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 ने सुना 8 घंटे योग करना है, उनमें से 90% ने इसको वहीं कैंसिल कर दिया। कैसे? अपने से नहीं होगा,
ये हमारा सब्जेक्ट नहीं,
हम इतने बिजी भाई, ये तो उनका काम है जो समर्पित रहते हैं, ये मधुबन वालों का काम है, टीचर बहनों का काम है। 90% लोग इसको अंदर ही अंदर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है बाबा कहता है, पर अपने से तो ये नहीं हो सकता, अपने को और भी तो काम करने हैं बहुत सारे। अब बचे 10% जिनको वहाँ इच्छा होती है कि हाँ 8 घंटा योग तो करना ही चाहिए। अब वो जब बाहर आते हैं क्लास से, आधे उसमें से फिर भूल जाते हैं। बचे 5, अब वो 5 में से कोई प्लान बनाते हैं, कोई एक दो दिन कुछ अच्छा योग करते हैं, और उसमें से कोई एक बिरला सफल होता है। इसलिए इसके लिए बहुत सुंदर प्लानिंग की ज़रूरत है, और हम इसे रिजेक्ट न कर दें, कैंसिल न कर दें, हम दृढ़ संकल्प करें कि मुझे करना है। कल पहले भी मैंने ऐसा ही योग किया था, और बाबा ये हमेशा कहते हैं अगर तुम्हें विजयमाला में आना है तो 8 घंटा योग करो, या ये कहते हैं जो 8 घंटा रोज योग करेंगे वो विश्व पर राज करेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको हम लालच न कह के एक बाबा का मोटिवेट करने का तरीका है। ये तो मिलेगा ही, भविष्य तो सुंदर होगा ही, क्योंकि 8 घंटे परमात्मा से जुड़े रहना, 8 घंटे परमात्मा मिलन की अनुभूति करना, 8 घंटे सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करना, 8 घंटे संसार को गुड विशेष देना, गुड वाइब्रेशंस देना, ये अपने में छोटी चीज नहीं है, यूनिक बात हो गई। इसलिए हम देखते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जो 8 घंटे योग को करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास 10 लोग ऐसे आए तो 10 के 10 वो अभ्यास शुरू करते हैं, उनमें से कोई एक बहुत सफल हो जाता है। मैं ऐसा भी देखता हूँ कि बहुत साधारण लोग इसमें ज़्यादा सफल होते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए ऐसा योग अभ्यास कौन कर सकेंगे। कई बार मनुष्य की अनेक इच्छाएं संसार में होती हैं, मुझे धन भी बहुत कमाना है, मुझे मान शान भी बहुत अर्जित करना है, मुझे ये बड़े बड़े कोर्स भी कर लेने हैं, और मुझे योगी बनना है,
सब चाहिए।
अब दुनिया में तो पहले से भी कहावत है
जी, एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए,
कि एक को अगर तुम साध लो, अगर तुम योगी बन जाओ तो ये सब चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। और मान लो योगी बनने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़े तो मनुष्य को छोड़ने के लिए तत्पर रहना ही चाहिए, क्योंकि त्याग से तपस्या का बहुत गहरा कनेक्शन है। जहाँ त्याग है वहीं तपस्या है, और त्याग भी सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग। देखिए, घर छोड़ देना कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन मान शान की इच्छा का त्याग कर देना, ईर्षा द्वेष घृणा भाव का त्याग कर देना, सबके लिए चित्त में शुभ भावनाएं भर लेना, मनोविकारों का त्याग कर देना, इम्प्योर फीलिंग्स का त्याग कर देना, अपने ईगो का त्याग कर देना, ये छोटी चीज नहीं है। इसके लिए नॉलेज भी बहुत होनी चाहिए, अवेयरनेस भी बहुत चाहिए, और इसके पीछे मनुष्य को पढ़ना पड़ता है। इसलिए जिसको योगी बनना हो उसको त्याग का बल तो स्वयं में भरना ही।
चलिए माता जी, ये तो रही बुरी चीजें जिन्हें हमें छोड़ना ही है, लेकिन कई बार जैसे आपने बहुत सारे लक्ष्यों की बात कही, तो कई बार कुछ चीजें सीखने की आवश्यकता महसूस भी होती है। मान लीजिए सेवा के क्षेत्र में हमें जाना है तो बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना होगा, कई चीजें और भी हमें अपने जीवन में शामिल करनी होगी नॉलेज में, तो ये चीजें करते हुए भी तो योग कई बार कम हो जाता है।
बिल्कुल कम हो जाएगा। मान लो कोई पढ़ाई में ही बहुत आगे जाना चाहता है और उसको पढ़ाई में बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, तो योग के लिए समय भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ऐसा योग करने के लिए मनुष्य को कम से कम 2 बार तो बैठना चाहिए ही दिन में, एकांत की भी उसको जरूरत पड़ेगी। इसके बिना कोई ऐसा श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकता। और ये योग भी कोई एक दिन कर ले और काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब ऐसा योग अभ्यास कंटिन्यू चलेगा तब परफेक्ट प्योरिटी आएगी, तब चित्त संपूर्ण रूप से शुद्ध होगा, तब हमारा मन शुभ भावनाओं से भरपूर होगा, तब उसमें खुशी प्रेम शांति या शक्तियाँ भरपूर होती जाएंगी। इसलिए निरंतर इसकी प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन त्याग करना तो जरूरी है।
तो लक्ष्य में थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा भ्राता जी, कि क्या करें और क्या ना करें। जैसे ये तो बात हो गई कि चलिए विकारों का तो आंतरिक त्याग करना है, लेकिन जैसे सेवाओं के फील्ड में या जहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है ही, वो हमें करना ही पड़ रहा है और वो हमारे योग को कम कर रहा है, वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? क्या
नहीं, उन्हें भी छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक सफल योगी बनने के लिए अपनी रूटीन बहुत बिजी हो जाए, हम अति व्यस्त हो जाएं, वो भी इस मार्ग में बाधक होगा। इसलिए अपनी दिनचर्या को बहुत लाइट रखना, कार्य को अपने कंट्रोल में कर लेना, और अगर किसी का बिजनेस भी है उसको भी कंट्रोल में करना। बहुत लोग हैं हमारे यहाँ बिजनेस वाले बहुत आते हैं जो अच्छा योग करते हैं, वो अपना रूटीन बनाकर चलते हैं, नियम भाई सवेरे हमें 10:30 बजे या 11 बजे दुकान खोलनी है, उससे पहले का टाइम मेरा अपना है, परिवार के लिए है। ऐसे ही दिन में कम ग्राहकी होती है तो मुझे रेस्ट भी कर लेना है, और भी दुकान में साथी होते हैं, शाम को मुझे एक घंटा अपने लिए बचाना अवश्य है। तो एक लक्ष्य बनाने की ज़रूरत होती है। अब कोई कहे नहीं मुझे तो सारा टाइम बिजनेस में ही देना है, मुझे तो 9 बजे दुकान खोल देनी है और मुझे तो रात के 9 बजे तक ही खुली रखनी है, मुझे तो इतना पैसा कमाना है, तो ऐसे में योगी बनना बहुत कठिन काम होगा। इसलिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा लाइट करना। रही बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट तो ये नहीं कर सकता, जिसके पास प्योरिटी का बहुत बल है वो इसमें ज़्यादा सफल होते हैं। देखिए राजयोग का डायरेक्ट प्योरिटी से जुड़ा होता है, प्योरिटी जिसकी जितनी बढ़ती जाती है योग अभ्यास उतना ही नेचुरल होता जाएगा। लेकिन पहले से जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, जिसके विचार बहुत सुंदर हैं, उसको योग अभ्यास में ज्यादा सफलता होगी। तो चित्त की निर्मलता, स्वभाव की सरलता और प्योर संस्कार, ये तीनों चीजें मिलकर किसी मनुष्य को योग की ऊंचाई पर ले जाती हैं। स्वभाव बहुत सरल रखना पड़ेगा, सबके लिए शुभ भावनाएं और प्रेम भी पैदा करना पड़ेगा। अगर मन में दूसरों के लिए कटुता है, दूसरों का चिंतन बहुत चलता है, मन में क्या क्योंकि उधेड़ बुन बहुत चलती रहती है, मन भारी होता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जो इस संपूर्ण ज्ञान को जानकर साक्षी भाव धारण कर ले, जिसके मन में नो क्वेश्चन एंड नो कंप्लेंट की भावना आ जाए, जिसका चित्त निस्वार्थ से भरपूर हो जाए, निस्वार्थ क्योंकि मनुष्य कर्म कर रहा है, वो सबके बीच रह रहा है, उसमें कामनाएं, उसमें स्वार्थ जहां तहां काम करता है, इसलिए जो मनुष्य जितना निस्वार्थ और निष्काम हो गया वो उतना ही श्रेष्ठ योगी बन जाता है। निष्काम भाव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि कामनाएं मनुष्य को कदम कदम पर होती हैं। कामनाओं को समझना, लक्ष्य को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक व्यक्ति बिजनेस करता है, उसको लक्ष्य है कि मुझे 6 मास में इतना कमा लेना है या ये काम कर देने, ये तो हुआ लक्ष्य, इसको छोड़ना नहीं होता है। कामनाएं होती हैं छोटी छोटी चीजें, मुझे समाज में सम्मान मिले, मैं ये काम कर रहा हूँ लोग मुझे बहुत सम्मान दें, मैं पैसे वाला हो गया हूँ उस तरह की मुझे मान्यता मिले, मेरी बात मानी जाए, ये सब कामनाएं। तो लक्ष्य बनाना किसी भी कार्य का वो सबसे सुंदर चीज़ है, हाईएस्ट टारगेट हम बना लें। और फिर दूसरा ये भी याद रखें कि जब वहाँ तक हम पहुँच जाएँ, मान लो कुछ कम अचीव किया है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें, उसमें परेशान न हो जाएं, इसको निष्काम भाव कहते हैं। कर्तव्य परायणता भी हो गई और कर्तव्य हमें बांध भी नहीं रहे हैं। तो तीसरी चीज के हम कर्मों को एंजॉय बहुत करेंगे, चाहे वो पढ़ाई का कर्म है या भोजन बनाने का कर्म है या कोई बड़ा ऑफिसर डायरेक्टर है उसकी जिम्मेदारियों का कर्म है या और घरों में जो सारे काम हो रहे रोज बहनें माताएं जो कर रही हैं उसको एंजॉय करें। मैं हमेशा कहता हूँ, मान लो तुम ड्राइविंग भी कर रहे हो, डू एंजॉय इट, बहुत फास्ट चला रहे, एकदम टेंशन में चला रहे, उससे फायदा नहीं, नुकसान होगा, मनोस्थिति बिगड़ेगी। आपको बाइक पर ही चलना है, एंजॉय करो इसको। तो एंजॉयमेंट हर कर्म के पीछे अगर हम जोड़ दें तो हमारी मानसिक स्थिति तैयार हो जाती है एक अच्छा राजयोग करने के लिए।
भ्राता जी, ये जो निष्काम भाव की बात है, साक्षी भाव की बात है, कामनाओं से मुक्त होने की बात है, सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन है बहुत बड़े बड़े। एक तो व्यक्ति का ध्यान भी नहीं रहता इन चीज़ों पे और साथ ही ऐसा करना सहज भी नहीं लगता। तो ये करेंगे तब योग होगा, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है कि योग करेंगे तो ये कम होते चले जाएंगे?
दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं
जी।
थोड़ा इसको धारण करेंगे जीवन में तो योग अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे योग अभ्यास बढ़ेगा तो योग का सुख, योग का आनंद, योग की प्राप्तियां इतनी जबरदस्त है कि मनुष्य की ये छोटी छोटी कामनाएं आपकी छूट जाती हैं।
प्रताप जी, कईयों का ये प्रश्न हो सकता है कि 8 घंटे के योग में क्या क्या शामिल है, बैठ के किया जाए, चलते फिरते किया जाए, और जो मुरली क्लास चलती है यहाँ पे वो भी शामिल है, और चीजें हम सुनते हैं वो शामिल है, इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें।
बहुत अच्छा प्रश्न है। सवेरे उठ के मनुष्य योग करता है, फिर वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने भी जाता है। प्रारंभिक दिनों में हम कई चीज़ों को योग के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें मुरली सुनना, क्योंकि मुरली सुनने में भी हम एक बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, भगवान हमें पढ़ा रहा है इस फीलिंग में हम रहते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम आत्माएँ हैं, और बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें मिल रही हैं, तो हम एक तरह से अव्यक्त स्थिति में हैं उस टाइम। व्यक्त भाव से हम परे हैं, व्यक्त भाव से परे होना इसको ही अव्यक्त भाव में स्थित होना कहा जाता है। तो सवेरे उठकर योग करना, योग में स्वमान का अभ्यास करना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, शिव बाबा से रूरिहान करना, सूक्ष्म लोक में जाना, तीनों लोकों की सैर करना, सकाश देना प्रकृति को, वायुमंडल को, दुखी आत्माओं को, इन सब चीज़ों को हम योग में इंक्लूड कर लें और एक लक्ष्य बना लें कि योग का अभ्यास हमें कर्म में ही ज़्यादा करते चलना है। बैठना भी इसके लिए आवश्यक है और एकांत भी इसके लिए आवश्यक है। देखिए, मैंने जब प्रारंभिक दिनों में अपने योग को बहुत आगे बढ़ाया था तो मैं बहुत ज़्यादा एकांत लिया करता था। मैंने अपने टाइम को बस सेवा और उसके अलावा संपूर्ण एकांत। मुझे दिन में भी अगर टाइम मिला तो मैं पहाड़ियों में जाता था, सवेरे भी 5 बजे चला जाता था, शाम को भी फिर से कामकाज पूरा हुआ एकांत में चल जाता था। तो एकांत में मनुष्य की एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, एकांत में उसका चिंतन बहुत अच्छा होता है, एकांत में वो अपने से बात कर सकता है, अपने को स्वयं मोटिवेट कर सकता है। तो एकांत भी बहुत जरूरी है, और ऐसे योग अभ्यासी को कम से कम 2 बार तो बैठना ही चाहिए, और अगर किसी के पास अच्छा टाइम है तो वो 4 बार भी बैठे, भले ही 15-15 मिनट बैठे, लंबा समय बैठने की जरूरत नहीं। बैठने को कहने का हमारा लक्ष्य यह है कि एकाग्रता बनी रहे। मैं अपने पहले साल के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि मैं रोज 5 बार तो बाबा का रूम जो बना होता है मेडिटेशन रूम, उसमें जाके बैठता था, एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के लिए, ताकि एकाग्रता बनी रहे। थोड़ी भी कम हुई तो फिर जा बैठे
सारे दिन में, 5 बार
सारे दिन में। तो हम ये अपने यहाँ जो बहुत सारे लोग आते हैं उनको भी कराते हैं, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। लोग इससे अच्छे से अच्छे अनुभव एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के करके जाते हैं, तो ये भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिनको ऐसा 8 घंटे का योग करना है वो इसकी एक सुंदर प्लानिंग कर लें, सवेरे 4 बजे उठे। मैं बहुत जल्दी उठने की बात भी नहीं कहूँगा, जो लोग ग्रस्त में हैं या कार्यों में हैं मैं नहीं कहूँगा वो 2:30 बजे उठें, 3 बजे उठें, वो 4 बजे ही उठें। अब लक्ष्य बना ले 4 से 8, ये जो हमारे पास 4 घंटे हैं इनको हमें पूरा सफल करना है, और योग का अपना चार्ट लिखें। पहले 1 घंटा होगा, फिर 2 होगा, फिर 2:30, 3:30, 4:30, ये 4 घंटे, इसमें हम मुरली को भी जोड़ देंगे, तो ये जो 4 घंटे हैं इसमें हम योग का चार्ट इतना कर लेंगे, ऐसी एक प्लानिंग करें। उसके पास बाद 8 से ऑफिस जाने तक, कोई 9:30 जाएंगे, कोई 9 जाएंगे, या कोई 8 बजे भी चल जाएंगे अपने काम पर, इस टाइम को भी बांट लें, एक फिक्स कर लें, इसमें मुझे ये अभ्यास करने हैं। अब जब हम कर्म क्षेत्र पर चले गए तो एक जनरल बात यह है कि सबको कोई एक अभ्यास अपने मन में साथ लेकर जाना चाहिए कि आज कर्म क्षेत्र पर सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, एक अभ्यास बस, एक अभ्यास को बार बार करेंगे, और फिर शाम को जैसे ही घर लौटे, कोई 5 बजे लौटे, कोई 6 बजे लौटे, जो सर्विसमैन है तब तक ये अभ्यास करें, 6 बजे से 10 बजे के टाइम को फिर से 4 घंटे हमारे पास हैं। भले ही मनुष्य उसमें थकेगा भी, वो कुछ रिलैक्स भी चाहेगा, इसमें लक्ष्य बना ले के हमें 1-1.5-2 घंटा एक अच्छी स्थिति का अभ्यास कर लेना है। उसमें पहले सुनना भी जोड़ लें, अच्छी बातें सुनते हैं, मुरली सुनते हैं और कोई अच्छी बात सुनते हैं वो भी जोड़ लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि हर घंटे अपने मन और बुद्धि का एक सुंदर प्रोग्राम फिक्स कर लें कि मुझे हर घंटे ये अभ्यास करने हैं। ये एक बहुत अच्छा चार्ट हम लोग बनाते हैं और मैंने इसको बहुत ज़्यादा अभ्यास किया था। पहले 6 मास बहुत तत्परता से इसकी प्रैक्टिस मैंने की थी और मुझे सबसे सुंदर चार्ट लगा। अव्यक्त बाबा ने इसकी राय दी थी कि ऐसे ऐसे करो, याद होगा सभी को, बाबा ने कहा था जैसे बड़े लोग अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं, टाइम मिनट टू मिनट प्रोग्राम उनका फिक्स होता है, तुम इस संसार में सबसे बड़े हो तो तुम भी अपने मन और बुद्धि का एक टाइम टेबल फिक्स कर लो। तो मैंने ऐसे ही बना लिया चार्ट कि सवेरे मैं तो 3:30 बजे उठ जाता था, 3 से 4 मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, 4 से 5 ये करूँगा। इनमें मैंने कई प्रैक्टिस जोड़ ली थी,
मतलब वेराइटी।
फिर 5 से 6, 6 से 7, तो ऐसी कम से कम 16-17-18 तरह की प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिस रिपीट कर ली गई थी। ऐसा भी एक चार्ट सभी जो ऐसे जिज्ञासु हैं वो बना सकते, लेकिन चार्ट खुद बनाना चाहिए। मान लो मैं उन्हें चार्ट देता हूँ तो उसमें उनको उतना मजा नहीं आएगा। अपनी प्लानिंग जब मनुष्य स्वयं करता है तो उसमें वो बहुत दृढ़ रहता है और अपनी दिनचर्या के अनुसार करता है, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करता है कि इस घंटे में बहुत बिजी हूँ तो मैं केवल ये याद कर सकूंगा, मैं एक महान आत्मा हूँ। 10 बार याद करूंगा मैं एक महान आत्मा हूँ, दूसरे को ये पता नहीं होगा। इस घंटे में बहुत लाइट हूँ तो मैं अभ्यास कर सकूँगा, बाबा की किरणें आ रही हैं। तो अपने अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना ऐसा चार्ट बना लिया, दूसरी विधि है। और तीसरी विधि मैं एक बहुत अच्छी सजेस्ट करता हूँ, जो भी बहुत सुंदर है और मैंने इसका भी अभ्यास बहुत समय तक किया था, कि हम अपनी दिनचर्या को कर्म वाइज कुछ भागों में बांट लो। मान लो हमने 20 तरह के कर्म लिख लिए, एक लिस्ट बना लें। उसमें नहाना धोना भी एक कर्म है, पानी पीना भी एक कर्म है, भोजन खाना भी एक कर्म है, बनाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर में कपड़े धोने हैं या घर की सफाई करनी है, या किसी से काम कराना है, या कोई दुकान पर है उसको ग्राहकों को डील करना है, या अपना अकाउंट देखना है। अपने 18-20 तरह के काम लिख लें
जी।
और इस कर्म में ये अभ्यास, इस कर्म में ये स्वमान, इस कर्म में ये प्रैक्टिस फिक्स कर लें। उसकी लिस्ट भले ही साथ ले जाएं, 2-4 दिन में वो याद हो जाएगा और फिर उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने एक प्रैक्टिस रखी थी, हमें 2-3 बार कपड़े बदलने पड़ते थे कामकाज के कारण, तो इसमें तो टाइम तो जाता है, 5-5 मिनट तो लगेगा एक बार में। तो मैं सोचा 15 मिनट ये भी तो खाली चला जाता है, तो मैंने उस टाइम प्रैक्टिस कर ली कि ये देह भी मेरा वस्त्र है और मुझे ये भी तो बदलना है, कितने देह मैंने बदल लिए हैं, मैं तो आत्मा हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिस ने बड़ा आनंद दिया। हंसी की बात, हम सेविंग करते हैं, भाई लोग सेविंग करते हैं, शीशे के सामने हैं आत्मा, अपने को ही देख रहे हैं ना, और ये देह मेरा मंदिर है और ये हिस्सा मंदिर का गुंबज है ऊपर का, है ना, तो हम अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ये हंसी खुशी के एंटरटेनिंग प्रैक्टिस है।
ऐसे ही जो आप अभ्यास और करते थे कर्म में, वो भी कुछ सुना दे, बड़े सुंदर लग रहे हैं।
मैं भोजन खाता था तो मैं अभ्यास करता था, बाबा आप आ जाओ और मुझे खिलाओ, तो एक बार मैं खिला रहा हूँ बाबा को, एक बार वो मुझे खिला रहे हैं। हाथों से नहीं, कोई देख लेगा तो मजाक करेगा क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं क्या कुछ, लेकिन सूक्ष्म रूप से बाबा एक पीस आप मुझे खिलाओ, फिर एक मैं आपको खिलाता हूँ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं ऐसे करता रहा। घूमने का बहुत शौक था ही और मैं घूमता बहुत था पहाड़ियों में, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस। कभी मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, और कभी मेरी प्रैक्टिस चलती थी कि ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे ऊपर से बरसात हो रही है शक्तियों की और मैं नीचे घूम रहा हूँ। कब प्रैक्टिस करता था मैं बिल्कुल ऊपर बाबा के साथ हूँ, बुद्धि उसके स्वरूप पर फिक्स है और नीचे हम घूम रहे हैं। ऐसे ही मुझे लिखना भी होता था और पढ़ना भी, और उन दिनों मैं टाइपिंग किया करता था इंग्लिश की, तब ये कंप्यूटर आदि का जमाना नहीं था, टाइपराइटर होते थे, उसमें मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। हालांकि टाइपिंग करना एक बुद्धि का काम है और बिल्कुल आंखें भी फिक्स हैं और बुद्धि भी, लेकिन मैंने ऐसी प्रैक्टिस कर ली थी कि जैसे ऊपर से बाबा किरणें पड़ रही हैं और मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ऐसे लिखते हुए भी मैं बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास करता था कि बाबा आकर बैठ गया मेरे पास और बाबा कहता हूँ अब आप बोलो, डिक्टेट करो, मैं लिखूँगा। इससे बहुत अच्छे अनुभव होते थे। तो इस तरह इस योग को हम एक एंटरटेनमेंट बना दें, इसको भारी न करें कि हमें बुद्धि को एकाग्र ही करना है, कि बाबा को नीचे बुला लें, कभी उसको अपनी सिर पर छत्र छाया देखें, कभी शिव बाबा हमारे सामने है, इस तरह का अभ्यास करें जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, स्नान कर रहे तो शिव बाबा से बात कर रहे, बाबा अब तो मेरे अंदर बैठे हो, अब मैं आप पे लोटी चढ़ा रहा हूँ जल की, नहाते हुए तब लोटे होते थे नहाने के लिए, भगवान से बातें होती
थी, मनोरंजक अभ्यास।
तो कभी उनसे बातें करें, कभी उनको बुलाएं, कभी उनको थैंक्स दें, कभी अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, इस तरह की प्रैक्टिस करते करते हमारा योग बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर ये पावरफुल भी आप ही होता जाएगा।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, लग रहा है कि ये सारे आपके जो अनुभव आपने वर्षों से जो संजोए हुए हैं सचमुच बहुत ही आनंद प्रदान कर रहे हैं और हमारे सभी दर्शकों को भी आनंद देंगे। मुझे लगता था कि योग को लेके कई लोग केवल एक ही प्रकार से करते रहते हैं कि हमें यहाँ से परम धाम जाना है, वहाँ बाबा से कुछ लेना है, तो शायद एक प्रकार से मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन इतनी विविधता है योग में, आज आपसे ज्ञात हुआ, आपका बहुत 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 शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, योग भी वास्तव में बहुत ही एक मनोरंजक क्रिया है, हमें केवल एक ही प्रकार से नहीं लेकिन इन सभी प्रकार से योग का सुंदर अभ्यास करना चाहिए। जैसे रोज हम भोजन में नई नई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, वैसे ही योग में यदि अलग अलग अभ्यास किए जाएं तो सचमुच 8 घंटे योग बहुत सहज और सरल हो जाएगा। कौशिक जी का ये प्रश्न था, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम साधक बंधु और साधिकाएँ ये चाहते होंगे कि हमारा भी योग सहज रूप से 8 घंटे हो जाए। आज की इस चर्चा से निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ हुआ होगा, आप इसे अपने जीवन में लाइएगा और 8 घंटे योग तक पहुंचिएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।